नमस्ते, मैं रुद्र भानु प्रताप इतिहास तृतीय पेपर में आपके साथ हूँ। तृतीय पेपर में हम दक्षिण भारतीय राज्यों के से संबंधित उन राज्यों का अध्ययन करेंगे जो कि उस समय अत्यधिक शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे। इनमें सबसे पहले हम चालुक्यों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं चालुक्यों के बारे में। जिस समय उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, ठीक उसी समय दक्षिण में भी कई राज्यों का जन्म हुआ। सातवाहनों के पश्चात सुदूर दक्षिण में तीन राज्यों का उदय हुआ था, जिनमें जो निम्न है, एक पांड्य, दो चोल और तीन चेर। इन राज्यों के विषय में संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। इन तीनों राज्यों के पश्चात छठी शताब्दी में नई शक्तियों का उदय दक्षिण भारत की राजनीति में हुआ। चालुक्य इनमें प्रमुख थे। चालुक्यों ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य कायम किया तथा साथ ही कला, साहित्य और धर्म के विकास को प्रभावित किया। चालुक्यों की उत्पत्ति। अन्य प्राचीन राजवंशों की तरह ही चालुक्यों की उत्पत्ति भी विवादास्पद है। उनकी उत्पत्ति एवं आरंभिक वंश के विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए गए हैं। चालुक्यों की शक्ति का केंद्र वादामी या वातापी था, जिसका वर्तमान नाम बीजापुर है। यह मूल शाखा पश्चिमी चालुक्यों के नाम से विख्यात है। बाद में चालुक्यों की शाखाएं पिस्टापुर, वेमुलवाड़ा, कल्याणी इत्यादि के नाम से स्थापित हुई। चालुक्यों का नामकरण उनके पूर्वज चलक, चलिक या चलुक के नाम पर हुआ था। अनुश्रुतियों के आधार पर चलुक का जन्म सन्यासी हारिति पंचशिखा के अर्ध्यदान के समय उनके जलपात्रया चुल्लुक से हुआ था। चालुक्य अपना संबंध मनु और चंद्रमा से भी जोड़ते हैं। कुछ अभिलेखों में यह दावा किया गया है कि उनके पूर्वज अयोध्या के शासक थे तथा उनका जन्म ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के आँख से हुआ था। चालुक्यों की समता उत्तरापथ के चुल्लुकों के साथ की जाती है। ह्वेनसांग चालुक्यों को क्षत्रिय मानता है तथा स्मिथ महोदय का इसके संबंध में विचार है कि ये गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित हैं। इन विभिन्न विचारों के कारण किसी भी सर्वमान्य निर्णय पर पहुंच पाना अत्यंत ही कठिन प्रतीत होता है। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री के अनुसार अधिक संभावना इस बात की प्रतीत होती है कि चालुक्य उत्तर भारत के किसी क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, परंतु कालांतर में वे कर्नाटक में जाकर बस गए तथा वहां उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों की राजनीतिक स्थिति। चालुक्यों की मूल शाखा वातापी या वादामी के शासकों ने छठी से आठवीं शताब्दी के मध्य लगभग दो शताब्दियों तक शासन किया। तत्पश्चात वेंगी और कल्याणी के चालुक्य प्रधान बन गए। अब हम पश्चिमी या वातापी के चालुक्यों का अध्ययन करेंगे। चालुक्यों के राजवंश का आरंभ जयसिंह से माना जाता है। उसने राष्ट्रकूटों और कदम्बों से संघर्ष कर अपने राज्य की स्थापना की। रणराग इस वंश का दूसरा शासक था। चालुक्यों की शक्ति को प्रतिष्ठापित करने वाला पहला शासक पुलकेशी प्रथम था, जिसका कार्यकाल 535 से 567 ईस्वी था। कार्यकाल एक बार और दोहरा देते हैं, 535 से 567 ईस्वी। चालुक्य वंशी अभिलेखों में वंशावली इसी राजा से आरंभ होती है। उसने वातापी पर अधिकार कर वहां एक दुर्ग का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी स्थापित की। उसने अश्वमेध यज्ञ किए तथा वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। इस वंश के अन्य प्रारंभिक शासकों में कीर्तिवर्मन प्रथम, जिसका शासनकाल 567 ईस्वी से 597 ईस्वी तक था, तथा मंगलेश, जिसका शासनकाल 597 ईस्वी से 608 ईस्वी तक था, के नाम मिलते हैं। कीर्तिवर्मन ने कोंकण के मौर्यों, वनवासी के कदम्बों और दक्षिण मैसूर के नलों को पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसके उसके पश्चात उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिसने कदम्बू का नाश कर कलचुरियो को पराजित किया। मंगलेश की हत्या कर कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा। वह चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। इसका शासनकाल 608 ईस्वी से 644 ईस्वी है। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल एक बार और सुने, 608 ईस्वी से 642 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन का समकालीन था। एहुल अभिलेख में इस राजा के कार्यकलाप पर पूरा प्रकाश पड़ता है। पुलकेशिन ने सैनिक शक्ति का सहारा लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने दक्षिण में कदम्बों, गंगों, कोंकण के मौर्यों को पराजित किया। उसने पुरी, लाट, मालवा, गुर्जर के शासकों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। पुलकेशिन ने उत्तर भारत के स्वामी श्रीहर्ष अर्थात हर्षवर्धन पर भी विजय प्राप्त की। नर्मदा नदी दोनों राज्यों की सीमा रेखा निर्धारित की गई। जिस समय चालुक्य अपनी शक्ति का विस्तार कर रहे थे, ठीक उसी समय पल्लव शासक भी अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। अतः दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य था। इस संघर्ष ने लंबे समय तक चलने वाले चालुक्य पल्लव संघर्ष को जन्म दिया तथा दोनों की शक्ति को कमजोर कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली बार पुलकेशिन ने को पल्लवों के विरुद्ध सफलता मिली, परंतु दूसरी बार जब उसने कांची पर आक्रमण किया तब उसे विफलता हाथ लगी। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने पुलकेशी को पराजित किया तथा उसका पीछा बदामी तक किया। पुलकेशी युद्ध क्षेत्र में मारा गया तथा उसकी राजधानी पर पल्लवों का अधिकार हो गया। पुलकेशी के समय से ही उसका भाई विष्णुवर्धन ने बोंगी में राज्य स्थापना किया। पुलकेशी ने ईरान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। अजंता के एक चित्र में उसे ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी उसके दरबार में आया था। विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680 ईस्वी। पुलकेशिन के मृत्यु के पश्चात चालुक्यों की शक्ति कमजोर हो गई। आंतरिक कलह के साथ साथ राजवंश के अनेक दुश्मन भी तैयार हो गए थे। ऐसी परिस्थिति में विक्रमादित्य राजा बना। उसने चोलों, पांड्यों और केरलों को पराजित किया तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसने पल्लवों से बादामी वापस छीना तथा उनकी राजधानी कांचीपुरम पर अधिकार कर लिया। यद्यपि यह अधिकार अस्थायी सिद्ध नहीं हो सका, तथापि इस समय में विक्रमादित्य के भाई जयसिंह वर्मन को लाट का शासक नियुक्त किया गया, जिसने गुजरात के चालुक्य राजवंश की शाखा स्थापित की। विनयादित्य 680 ईस्वी से 696 ईस्वी। विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने पल्लवों, चोलों, पांड्यों और केरल के साथ युद्ध में विजय प्राप्त की। उसने संभवतः उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तथा युद्ध के दौरान मारा गया। विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी। विजयादित्य ने भी पल्लवों की राजधानी पर आक्रमण कर वहां के राजा परमेश्वर वर्धन द्वितीय से पर्याप्त धन वसूला। उसने पदक्कल एक बार और सुने उसने पदक्कल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विक्रमादित्य द्वितीय 733 ईस्वी से 747 ईस्वी। इसके समय में भी पल्लवों से संघर्ष जारी रहा। विक्रमादित्य ने गंगों की सहायता से पल्लवराज नंदीवर्मन को पराजित किया। उसने तीन बार पल्लवों की राजधानी पर आक्रमण किया। एक बार उसने उसके बेटे ने भी कांची पर चढ़ाई की। हमेशा की तरह ही चालुक्य धन लेकर अपनी अधीनता स्वीकार कराकर वापस लौट जाते थे। विक्रमादित्य ने चोलों, पांड्यों, केरलों और कलभ्रों को भी परास्त किया और अब आक्रमणकारियों के प्रयास को भी इस समय विफल कर दिया गया। परंतु लाट और राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर वहाँ से चालुक्यों का शासन समाप्त कर दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय 747 ईस्वी से 757 ईस्वी। वातापी की सखा का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस समय चालुक्य पल्लव संघर्ष ने चालुक्यों की शक्ति को कमजोर कर दी थी, फलतः उसके सामंत शक्तिशाली बनने लगे थे। ऐसे ही एक सामंत दंती दुर्ग राष्ट्रकूट ने साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। कालांतर में दक्षिण के राज्य भी उसके नियंत्रण में आ गए। राष्ट्रकूटों के उदय के साथ ही चालुक्यों की पश्चिमी शाखा का विनाश हो गया। अब हम चालुक्यों की दूसरी शाखा अर्थात चालुक्यों की पूर्वी शाखा वोंगी के चालुक्यों का अध्ययन करेंगे। चालुक्यों के मूल राजवंश के अतिरिक्त वोंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्यों ने भी दक्षिण भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलुकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन प्रथम ने इस राजवंश की स्थापना की, अर्थात वोंगी के चालुक्यों के शाखा की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने की थी। पूर्वी चालुक्यों की राजधानी क्रमशः विष्टुपुर, वोंगी और राजमुंदरी बनी। आरंभ में विष्णुवर्धन ने विष्टुपुर का गवर्नर बहाल किया, परंतु इस वंश के अन्य शासकों ने विजयादित्य प्रथम का नाम लिया जाता है। विजयादित्य ने राष्ट्रकूटों से संघर्ष कर अपने वंश के गौरव की रक्षा की, परंतु विष्णुवर्धन चतुर्थ कार्यकाल 664 से 699 ईस्वी को राष्ट्रकूट शासक प्रथम कृष्ण तृतीय ने पराजित कर दिया। उसे ध्रुव ने भी हराया तथा अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। विजयादित्य द्वितीय 799 से 887 ईस्वी का भी राष्ट्रकूटों से संघर्ष जारी रहा। इस समय राष्ट्रकूट गृह कलह में फंसे हुए थे, अतः इसने राष्ट्रकूटों के अनेक नगरों को लूटा। गंगों और गुर्जरों से भी उससे युद्ध करना पड़ा, परंतु अंत में राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने उसे पराजित कर अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया। विजयादित्य तृतीय 848 से 892 ईस्वी इस वंश का अंतिम महान शासक था। वह वीर और पराक्रमी था। पल्लवों को उससे मात खानी पड़ी। मैसूर के राजा, गंगवंश के शासक, राष्ट्रकूट और पांड्य तथा कलचुरी राजाओं को भी उसने हराया। विजयादित्य तृतीय के पश्चात पूर्वी चालुक्यों के बुरे दिन आ गए। भीम प्रथम 892 से 922 ईस्वी ने राजवंश की प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास किया। उसका अधिकांश समय राष्ट्रकूटों से युद्ध करने में बीता। भीम के बाद अनेक अयोग्य एवं दुर्बल राजाओं ने राज किया। चोलों का प्रभाव चालुक्यों पर बढ़ता गया। चोलों की सहायता से शक्तिवर्मन 1003 ईस्वी में राजा बना। अब पूर्वी चालुक्य वस्तुतः चोल के अधीनस्थ शासक बन गए। दोनों वंशों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। इस वैवाहिक संबंधों से कुलोत्तुंग या राजेंद्र चोल द्वितीय हुआ। उसने विजयादित्य सप्तम को बोंगी से हटाकर वहाँ अपने पुत्र को शासन सौंप दिया। चालुक्य के राज्य अब चोलों के अधीन हो गया और वोंगी चालुक्य के राजवंश समाप्त हो गया। कल्याणी के चालुक्य 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कल्याणी या कल्याणी में भी चालुक्यों की एक शाखा का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ। इस वंश की स्थापना का श्रेय तैलप द्वितीय 993 से 997 ईस्वी को दिया जाता है। आरंभ में वह राष्ट्रकूटों का सामंत था, परंतु बाद में राष्ट्रकूटों की दुर्बलता का लाभ उठाकर वह एक स्वतंत्र शासक बन गया। उसने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ाई। उसके हाथों में चेदी, उड़ीसा और कुंतल के शासक मालवा के परवार परमार राजा मुंज और उत्तम चोल पराजित हुए। वह गुजरात के अतिरिक्त समस्त राष्ट्रकूट राज्यों का स्वामी बन गया। अगले चालुक्य राजा सत्याश्रय 997 से 1008 ईस्वी ने चोल शासक राजा राज प्रथम को पराजित कर कुछ इलाकों पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु उसने कलचुरियों तथा परमारों से मात खानी पड़ी। जयसिंह द्वितीय 1015 से 1043 ईस्वी, इसके समय में कलचुरियों परमारों और चोलों ने सम्मिलित रूप से चालुक्यों पर आक्रमण किए, परंतु वे असफल रहे। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी से 1068 ईस्वी, सोम प्रथम ने को चोलों ने भीषण आक्रमण का सामना करना पड़ा। चोलों ने कल्याणी को आग लगाकर बर्बाद कर दिया, परंतु बाद में सोमेश्वर प्रथम द्वारा चोलों का राजा राजाधिराज युद्ध में मारा गया। सोमेश्वर ने कोंकण, गुजरात, मालवा तथा कलचुरियों से भी युद्ध किया। चोल भी शांत नहीं रहे। राजेंद्र केसरी ने सोमेश्वर को बुरी मात दी। विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 ईस्वी, कल्याण के चालुक्य के सखा का अंतिम महान शासक विजयादित्य षष्ठ हुआ। उसने चोल राजा वीर राजेंद्र और कदम शासक की सहायता से चालुक्य साम्राज्य के दक्षिणी भाग का राज्य प्राप्त किया। बाद में उसने सोमेश्वर द्वितीय को अपदस्थ कर सत्ता स्वयं अपने अधिकार में ले ली। अपने राज्यारोहण के साथ ही उसने चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी को आरंभ किया। उसका राज्य अपेक्षाकृत शांति का था। अपने शासन के आरंभ में ही उसे अपने भाई जयकेसी के विद्रोह का सामना करना पड़ा, परंतु इसे उसने आसानी से दबा दिया। उसके समय में ही चोल चालुक्य संघर्ष पूर्वक चलता रहा। उसने कांची पर आक्रमण किया तथा वीर चोल से आंध्र प्रदेश का कुछ भाग छीनने में सफलता प्राप्त की। इन क्षेत्रों के अधिकार को लेकर उसका संघर्ष चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम से भी हुआ, परंतु अंततः ये इलाके विक्रमादित्य को ही मिल गए। विक्रमादित्य ने अपने सामंतों की सहायता से द्वार समुद्रम के होयसलों को भी पराजित कर अपनी सत्ता मानने को बाध्य कर दिया। उसने विद्रोही सामंतों उचंगी के पांडे, गोवा के कदंब और शिलाहरों को अपनी सत्ता मानने को मजबूर किया। तथापि विद्रोह एवं असंतुष्ट सामंतों को वह पूरा नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका। उसने मालवा के परमारों के उत्तराधिकार के युद्ध में जगदेव का पक्ष लेकर उसे गद्दी दिलवाई, परंतु यह व्यवस्था स्थायी नहीं रह सकी। जगदेव को राज्य छोड़कर विक्रमादित्य के दरबार में शरण लेनी पड़ी। निसंदेह विक्रमादित्य कल्याणी के चालुक्यों का सबसे योग्य एवं महान राजा था। वह एक वीर विजेता एवं विद्वानों का संरक्षक था। राज्य कवि विल्हण उसका दरबारी कवि था, जिसने विक्रमांक देवचरित की रचना की। एक बार और सुने, विक्रमांक देवचरित की रचना की एवं विक्रमादित्य का गुणगान किया। विल्हण के अनुसार विक्रमादित्य ने गुरु, मरु, सिंधु, तुरुस्क, काश्मीर, विदर्भ, नेपाल और बंग पर विजय प्राप्त की, परंतु विल्हण का वर्णन अति रंजित है। विक्रमादित्य के दरबार में विल्हण के अतिरिक्त अन्य विद्वान भी रहते थे, जैसे विज्ञानेश्वर उन्हें याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षर टीका लिखी। विक्रमादित्य के समय में कल्याणी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया था। उसने अपने नाम से विक्रमपुर नगर भी बसाया। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चालुक्यों की शक्ति घटने लगी। अब चोलों के साथ साथ चालुक्यों को काकातियों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा। 1175 में चालुक्यों ने कल्याणी पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर चतुर्थ 1181 से 1189 ईस्वी ने पुनः कल्याणी पर अधिकार किया, परंतु शीघ्र ही उसे यादव राजा भिल्लन से हार कर गोवा भागना पड़ा। कल्याणी पर यादवों का अधिकार हो गया। इस प्रकार कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश समाप्त हो गया। चालुक्यों की सांस्कृतिक देन। 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चालुक्यों की विभिन्न शाखाओं ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव जमाए रखा। अनवरत युद्धों में संलग्न रहने के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। चालुक्यों के अधीन दक्षिण में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा हुई। चालुक्य राजाओं ने अनेक यज्ञ किए, मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया, ब्रह्मा विष्णु एवं शिव की पूजा अर्चना की। वैदिक धर्म के विकास ने समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को बढ़ावा दिया। इस समय अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना भी हुई। यह धार्मिक सहिष्णुता का युग था। चालुक्य राजाओं ने जैन विद्वानों एवं विहारों को भी दान दिए। फलस्वरूप चालुक्यों के अधीन जैन धर्म की भी प्रगति हुई। महाराष्ट्र में इस धर्म का बहुत अधिक प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म का भी प्रसार था। अजंता की कुछ बौद्ध गुफाओं का निर्माण चालुक्य राजाओं के राज्यकाल में ही हुआ था। इस समय भारत में पारसी धर्म का प्रभाव बढ़ना आरंभ हुआ। चालुक्यों ने अपने राज्य में पारसियों को बसने की आज्ञा दी थी। कला एवं साहित्य का विकास भी इसी समय हुआ। अजंता के जिन भित्ति चित्रों का निर्माण चालुक्यों के अधीन हुआ, उनमें सबसे प्रसिद्ध वह चित्र है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। पहाड़ों एवं चट्टानों को काटकर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस समय अनेक वैष्णव एवं जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ। एहुल अभिलेख के अनुसार रवि कीर्ति ने जिनेन्द्र का मंदिर बनवाया। वादामी और पत्तद काल में त्रिमूर्ति के विशाल मंदिर बने। इस समय के अन्य मंदिरों में बादामी का विष्णु मंदिर, विजयेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर आदि उल्लेखनीय हैं। विद्वानों एवं मंदिरों को दान दिए गए। इस समय सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक उपलब्धि है विल्हणकृत विक्रमान देव चरित्र। विल्हण विक्रमादित्य षष्ठ का दरबारी था। विज्ञानेश्वर भी संभवतः उसके दरबार में रहता था। उसने मिताक्षरा की रचना की थी। विक्रमादित्य ने कला और साहित्य को पर्याप्त संरक्षण दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर एक बार इतिहास तृतीय पेपर में। चालुक्य वंश की समाप्ति के पश्चात अब हम पल्लव वंश का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं पल्लव वंश। दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश का उदय सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात ही आरंभ हुआ। आरंभ में पल्लव सातवाहनों के अधीनस्थ शासक थे, परंतु वाकटकों, आधीरों, कदम्बों इत्यादि वंशों की तरह पल्लवों ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली तथा 6वीं शताब्दी तक दक्षिण भारतीय राजनीति में अपना विशेष स्थान बना लिया। पल्लवों की उत्पत्ति अत्यंत विवादास्पद है। वीएल राइस और विवेन कस्या जैसे विद्वानों की धारणा है कि पल्लव वस्तुतः पहल्लव या पार्थियन नामक विदेशी जाति थी, जो सातवाहनों के पतन के पश्चात सिंधु घाटी से आकर तोलैंड मंडलम क्षेत्र में बस गई। एक बार और सुने, तोलैंड मंडलम क्षेत्र में आकर बस गई। पल्लवों को विदेशी प्रमाणित करने के लिए दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि कांची के वैकुंठ पेरुमाल मंदिर में राजमुकुट का चित्र वैक्टीरियन राजा दमित्र के राजमुकुट से मिलता जुलता है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल पल्लवों को वाकटकों से संबंध मानते हैं तथा अन्य विद्वान पल्लवों को नागवंश या नागचोल कुल से संबद्ध मानते हैं। ये सारे मत विवादपूर्ण हैं। इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि पल्लव पहलवों के वंशज थे। यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे उत्तरी भारत से दक्षिण भारत आए थे। संभवतः उनका मूल निवास स्थान तुलैंड मंडलम थ्री था। पल्लव सातवाहनों के सामंत थे, परंतु उनमें दक्षिण के पश्चात उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। कालांतर में पल्लव दक्षिण की प्रमुख शक्ति बन बैठे। पल्लवों का राजनीतिक इतिहास। पल्लवों का आरंभिक इतिहास की जानकारी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक अभिलेखों से ज्ञात होती है। प्राकृतिक अभिलेखों में अनेक राजाओं का नाम उल्लेख मिलता है। आरंभिक शासकों में सबसे प्रतिभाशाली राजा शिव स्कंद वर्मन चौथी शताब्दी ईस्वी में था। वह भारद्वाज गोत्रीय होने का दावा करता था। उसने अनेक वैदिक यज्ञ करवाए। उसकी राजधानी कांचीपुरम थी। उसका राज्य कृष्णा नदी से विलारी नदी तक फैला हुआ था। अन्य शासकों के नाम भी प्राकृत अभिलेखों में मिलते हैं। संस्कृत अभिलेखों में 16 वैसे राजाओं का जिक्र है जिन्होंने 350 से 575 ईस्वी के मध्य राज्य किया। प्राकृत और संस्कृत अभिलेखों के अनुसार विष्णुगुप्त नामक पल्लव राजा हुआ जिसने समुद्रगुप्त को परास्त किया था और जिसका नाम प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। सिंह विष्णु। पल्लवों का पहला प्रमुख राजा सिंह विष्णु था। इसका शासनकाल 575 से 600 ईस्वी था। उसने अवनीसिंह, एक बार और सुने, अवनीसिंह की उपाधि धारण की। वह एक वीर पराक्रमी था, पराक्रमी राजा था। उसने चोल, मलय, कलभ्र, मालव, पांड्य और सिंहल के राजा तथा केरल को युद्ध में पराजित कर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने अपने राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत कर ली। उसकी सत्ता तमिल प्रदेश में पूरी तरह स्थापित हो गई। उसने कला एवं साहित्य के विकास को भी प्रश्रय दिया। किरातार्जुनी का रचयिता व प्रसिद्ध कवि भारेव उसी के समय हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम। इस वंश का दूसरा महान राजा महेंद्र वर्मन 600 ईस्वी से 630 ईस्वी था। वह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। युद्ध एवं शांति के कार्यों में वह समान रूप से प्रवीण था। उसने अनेक विरुद्ध जैसे मत विलास, विचित्रवित और गुणभर महेंद्र वर्मन के समय में ही पल्लवों और चालुक्यों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का संघर्ष आरंभ हुआ जो अनेक वर्षों तक चला। यह संघर्ष दक्षिणा पथ में आधिपत्य स्थापित करने के लिए हुआ था। पल्लवों की शक्ति से आशंकित होकर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन पर आक्रमण कर उसके राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। महेंद्र वर्मन ने भी संभवतः चालुक्यों को पराजित किया एवं पुल्लूर पर विजय प्राप्त की। महेंद्र वर्मन ने कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसने मत विलास प्रहसन की भी रचना की। आरंभ में उसकी अभिरुचि जैन धर्म में थी, परंतु कालांतर में वह शैव मतावलंबी हो गया। उसने वैष्णव धर्म को प्रश्रय दिया। नरसिंह वर्मन अर्थात महामल्ल। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। उसने विरासत में पाए हुए पल्लव राज्य को अस्थायित्व प्रदान किया। उसने चोल, पांड्य, चीर और कदम्बों शासकों को पराजित किया। सिंघल के राजा मानव वर्मा को भी गद्दी प्राप्त करने में नरसिंह वर्मन ने सैनिक सहायता प्रदान की। उसका संघर्ष चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ भी हुआ। आरंभ में पल्लव शासक पराजित हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। कांची के निकट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया तथा पल्लवों की राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित हो गई। नरसिंह वर्मन के समय 641 ईस्वी में ही प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था। उसने कांची के राजा और वहां के प्रजा की प्रशंसा की। परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन के कुछ वर्षों के लिए महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक शासक बना। उसके राज्यकाल की कोई विशेष घटना का उल्लेख नहीं है। उसका उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 695 ईस्वी हुआ। इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है पल्लव चालुक्य संघर्ष। दोनों वंशों के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि आरंभ में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने परमेश्वर वर्मन को हराया, परंतु अंतिम चरण में पल्लव राजा ने पेरुवालन्नल्लूर के युद्ध में विक्रमादित्य को बुरी तरह पराजित कर भागने पर मजबूर किया। परमेश्वर वर्मन के उत्तराधिकारी तथा पल्लवों का पतन। परमेश्वर वर्मन प्रथम के पश्चात पल्लवों की राजनीतिक शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह 695 से 720 ईस्वी का शासनकाल सुख समृद्धि शांति एवं कलात्मक प्रगति का युग था। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। दंडिनी उसके दरबार में रहता था। इस समय पल्लव चालुक्य संघर्ष कुछ समय के लिए रुक गया। उसने एक दूत मंडली भी चीन भेजी, जिससे व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। राजा सिंह के बाद चोल चालुक्य संघर्ष पुनः आरंभ हुआ। चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग शासकों की सहायता से कांची पर आक्रमण कर दिया। अतः परमेश्वर वर्मन द्वितीय 720 से 731 ईस्वी को चालुक्यों से समझौता करना पड़ा। गंग शासकों को इसने पराजित कर युद्ध में मार डाला। उसकी युद्ध के पश्चात गद्दी के अनेक दावेदार उठ खड़े हुए। अब राजसत्ता पल्लवों की दूसरी शाखा सिंह विष्णु के भाई भीम के वंशजों के हाथ में चली गई। इस वंश का प्रथम राजा नंदीवर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी बना। उसने चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय तथा राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। पांड्यों से भी उसका युद्ध हुआ, तथापि नंदीवर्मन ने बल्लव कलभ्र केरल आदि राज्यों पर विजय पाई, तथापि पांड्यों से यह पराजित हुआ। नंदीवर्मन ने अनेक पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया तथा अनेक नए मंदिर भी बनवाए। उसके द्वारा बनवाए गए मंदिरों में सबसे प्रमुख वैकुंठ पेरुमल का मंदिर है। दंतीवर्मन 796 से 847 ईस्वी, उसको भी राष्ट्रकूटों का आक्रमण झेलना पड़ा। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण कर इसे लूटा। नंदीवर्मन तृतीय 847 से 869 ईस्वी के शासन के समय पांड्य बहुत अधिक प्रभावशाली बन चुके थे। अपनी सुरक्षा के लिए पल्लव राजा ने राष्ट्रकूटों गंगों और चोलों की सहायता से पांड्यों पर आक्रमण किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। वह अपनी कला और साहित्य का संरक्षक था। उसने एक शक्तिशाली जलबेड़ा का गठन किया तथा श्याम ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। उसका उत्तराधिकारी नृपतुंग 870 से 878 ईस्वी हुआ। अपराजित वर्मन ने गंगों और चोलों की सहायता से नृपतुंग को गद्दी से हटाकर स्वयं सत्ता हथिया ली। पल्लवों का अंतिम राजा अपराजित वर्मन 879 से 897 ईस्वी था। यद्यपि इस राजा ने पांड्यों पर विजय प्राप्त की, तथापि चोल राजा आदित्य प्रथम ने 897 ईस्वी में इसे पराजित कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही पल्लव राजवंश का सत्ता समाप्त हो गया। पल्लवों की सांस्कृतिक देन। पल्लवों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में न सिर्फ राजनीतिक भूमिका ही निभाई, बल्कि सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी उनका शासन महत्वपूर्ण है। राज्य स्थापना के अतिरिक्त पल्लवों ने प्रशासनिक संगठन के साथ ही साहित्यिक एवं कलात्मक प्रगति को भी प्रोत्साहन दिया। प्रशासनिक व्यवस्था। पल्लवों ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की। राजा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजापालक के सिद्धांत पर बल प्रदान किया। वे सदैव प्रजा के हित की कामना करते थे। राज्य में सुख शांति बनाए रखना तथा बाह्य आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रधान उत्तरदायित्व था। वह न्याय की भी व्यवस्था करता था। राजा का पद वंशानुगत था तथा उत्तराधिकार के नियम निश्चित थे। राजा मंत्रिपरिषद, युवराज, आमत्य, महासेनापति, महादंडनायक, विनय स्थिति स्थापक, एक बार और सुने, विनय स्थिति स्थापक, गैलीमक, जिलाधिकारी, चुंगी वसूलने वाला पदाधिकारी, ग्राम प्रधान अर्थात ग्राम भोजक इत्यादि की सहायता से शासन करता था। राजवंश के व्यक्ति ही प्रशासन में भाग लेते थे। पल्लव राज्य विभिन्न मंडल कोट्टम, नाडु एवं ग्रामों में विभक्त था। मंडल में मांडलिक या राष्ट्रिक तथा कोट्टम में देशाधिक शासन का भार संभालते थे। स्थानीय शासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। गांवों एवं नगरों में स्वायत्तता प्राप्त नगर एवं ग्राम सभाएं थीं, जिसे नगरम और उर्व भी कहते हैं। नगर प्रशासन में व्यापारी एवं कारीगर प्रमुख भूमिका निभाते थे। पल्लवों की थल एवं जल सेना भी सुगठित थी। जल सेना की सहायता से सुदूरपूर्व एवं दक्षिण पश्चिम एशिया के राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने में सहायता मिली। इससे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। राज्य कृषि तथा सिंचाई की तरफ पूरा ध्यान देता था। राज्य की ओर से जमीन की माप कराई जाती थी। उपज अंश का छठा भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। चुंगी एवं व्यापारियों पर लगाए जाने वाले कर से भी राज्य को आमदनी होती थी। राज्य में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित थी। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पल्लवों के अधीन समाज एवं वर्ण जाति व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था की स्थापना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। ब्राह्मणों एवं विद्वानों को राजा की ओर से विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थीं। प्रत्येक वर्ण एवं जाति के लिए अलग अलग नियम थे। अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध था। सामान्यतः संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार था। विधवा को भी कुछ हिस्सा मिलता था। विधवा विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती के कुछ उदाहरण मिलते हैं। अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर आधारित थी। धार्मिक जीवन पल्लव शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। वेनसांग, जिसने 641 ईस्वी में कांची की यात्रा की थी, वहां की धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है। उसके अनुसार पल्लवों के राज्यों में सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था। चीनी यात्री के अनुसार कांचीपुरम में स्थिवर संप्रदाय के करीब 100 संघाराम थे, जिनमें 10,000 भिक्षु रहते थे। जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था। ब्राह्मण धर्म की पर्याप्त प्रतिष्ठा थी। पल्लव शासक ब्राह्मण धर्म मतावलंबी थे, फिर भी उनके धार्मिक विद्वेष की भावना नहीं थी। आरंभिक पल्लव शासकों ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया। महेंद्र वर्मन जैन धर्म को मानने वाला था, परंतु अधिकांश शासकों ने ब्राह्मण धर्म को ही प्रश्रय दिया। पल्लवों के अधीन शैव एवं वैष्णव धर्म ने पर्याप्त प्रगति की। अलवार अर्थात वैष्णव और नयनार अर्थात शैव संतों एवं शंकराचार्य के प्रभाव से इस समय वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ी। यज्ञ और हवन धार्मिक जीवन के मुख्य अंग बन गए। ब्राह्मण धर्म के प्रभाव ने मूर्ति और मंदिर निर्माण की कला को प्रोत्साहित किया। इस समय शिव, विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। उनके लिए भव्य मंदिर भी बने। शिक्षा एवं साहित्य पल्लव शासकों ने शैक्षणिक एवं साहित्यिक प्रगति में गहरी अभिरुचि ली। पल्लव राजा स्वयं साहित्य में रुचि रखते थे तथा विद्वानों को सम्मान एवं प्रश्रय देते थे। उनके समय में कांची एक विख्यात शैक्षणिक केंद्र था। वेन सांग और अन्य चीनी यात्रियों ने यहाँ ज्ञान अर्जित किया। पल्लवों के संरक्षण में अनेक विद्वान पले, जिनमें प्रमुख हैं भार्य, दंडिन और मातृदत्त। संस्कृत भाषा एवं साहित्य का इस समय सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। इसके साथ तमिल भाषा एवं साहित्य की भी प्रगति हुई। महेंद्र वर्मन साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति था, जिसने मत विलास प्रहसन तथा भगवद्जुक प्रहसनों की रचना की। भार्यू ने किरातार्जुनीय तथा दंडिनी ने दस कुमार चरित्र लिखा। नंदी वर्मन तृतीय के समय में नंदी कलम वक एक बार और सुने नंदी कलम वकम नंदी कलम वकम एवं भारतम की रचना हुई। तमिल कुराल की रचना का समय भी यही माना गया। मंदिरों का निर्माण। पल्लव कालीन कला का सर्वोत्तम विकास मंदिर स्थापत्य कला के रूप में देखा जा सकता है। पल्लवों के अधीन मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई, जो द्रविड़ शैली के नाम से विख्यात है। पल्लवों को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने वास्तुकला को काष्ठ कला और कंदरा कला के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। कांचीपुरम, महाबलीपुरम, तंजौर, कुंड कोटाई इत्यादि स्थानों में पल्लवकालीन वास्तुकला के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पल्लवों की संपूर्ण मंदिर स्थापत्य कला को प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम पर चार शैलियों में विभक्त किया गया है। महेंद्र वर्मन शैली, मामल्लव शैली, राजसिंह एवं नंदी वर्मन शैली। प्रथम शैली के मंदिरों में सादगी मिलती है। मंदिरों में एक स्तंभयुक्त बरामदा तथा अंदर की तरफ खोदकर बनाए हुए एक या दो कमरे होते हैं। इस शैली में स्तंभयुक्त कक्ष एवं मंडप भी बनाए गए। मंडपों का निर्माण बौद्ध चैत्यों से प्रभावित था। स्तंभों और मंडपों के निर्माण में विशेष ध्यान दिया गया। इस शैली के मंदिर दालवनूर, त्रिचनापल्ली, पल्लवरम, महेंद्रवड़ी, मोगल राजपुरम, भैरवकुंड इत्यादि स्थानों से मिलते हैं। भैरवकुंड से 8 मंडप मिले हैं। इन स्तंभों के आधार पर एवं शीर्ष सिंह की आकृति का बना हुआ है। इनके स्तंभों के आधार एवं शीर्ष सिंह की आकृति बना हुआ है। यह पल्लव वास्तुकला का आरंभिक चरण था। द्वितीय शैली का प्रमुख केंद्र मल्लालपुरम या महाबलीपुरम था। मंडप एवं रथ इस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं। मंडप के खंभों को वाराह, वामन अवतार, सूर्य, दुर्गा, गजलक्ष्मी आदि के सुंदर चित्रों से सजाया गया है। मंडप शैली के मंदिरों में वाराह, महिष तथा पंच पांडव के मंदिर और रथ शैली में सप्त पैगोडा के मंदिर विख्यात हैं। मामल्ल अथवा नरसिंह शैली में 10 मंडप मिले हैं। धर्मराज मंडप, कोटिकल मंडप, महिषासुर मंडप, कृष्ण मंडप, पंच पांडव मंडप, वाराह मंडप, रामानुजम मंडप, पंचायत शिव मंडप तथा 2 अर्धनिर्मित मंडप। रथ शैली मंदिरों का निर्माण रथ के आकार में हुआ। इसका निर्माण काष्ठ कला से प्रभावित था। पत्थरों की चट्टानों को काटकर इनका निर्माण हुआ। रथ शैली के 8 मंदिर मिले हैं। 1 द्रौपदी रथ एवं सप्त पैगोड़ा। सप्त पैगोड़ा के अंतर्गत निम्नलिखित रथ बने हैं। धर्म राज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ और पिदरी रथ, रथों का निर्माण बौद्ध बिहारों और चैत्यों से प्रभावित था। मंडप एवं रथ दोनों को अलंकृत मूर्तियों से सजाया गया। राजसिंह शैली के प्रमुख मंदिरों में महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित मंदिर तथा कांची के कैलाशनाथ और वैकुंठ पेरुल, एक बार और सुने, वैकुंठ पेरुमल के मंदिरों का उल्लेख किया जा सकता है। इस शैली के मंदिरों का निर्माण प्रस्तर खंडों को जोड़कर किया गया। मंदिरों का निर्माण चार दीवारी के अंदर हुआ। शिखर और गोपुरम के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। नंदी वर्मन शैली में बने मंदिरों का आकार छोटा होता था। इनके निर्माण में स्तंभ शीर्षों के विकास के अतिरिक्त कोई नवीनता नहीं दिखाई पड़ती है। इस शैली के प्रसिद्ध मंदिर हैं कांचीपुरम के मुक्तेश्वर और मंगेश्वर तथा गुड्डीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर। नंदीवर्मन शैली के मंदिरों को देखकर पल्लवों के पतन का आभास स्पष्ट हो जाता है। इसके बावजूद पल्लवों ने बौद्ध चैत्य विहार को विरासत में मिली हुई कला का विकास किया और एक नवीन शैली को जन्म दिया जो कि चोल और पांड्य कला में परिपूर्ण रूप से विकसित हुई। पल्लव कला की विशेषताएं दक्षिण पूर्व एशिया में भी पहुंची। यहाँ के विशाल मंदिरों में पल्लव कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।